मेरे घनिष्ठ मित्रों नमस्कार। आज 22 दिसंबर 2020 है और आज के इस AFEIS के लाइफ मैनेजमेंट में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मेरे पास कुछ मेल आए हैं और उस मेल में मेरे नौजवान साथियों ने अपने अलग अलग तरह की समस्याओं की चर्चा की है और जब मैंने उन ढेर सारे मेल को मिलाकर उनका तालमेल बैठा करके और उनकी समस्या के प्रमुख बिंदु को जानने की कोशिश की तो एक निष्कर्ष मेरे हाथ आया और वह निष्कर्ष यह कि सर हम यह करना चाहते हैं लेकिन, और लेकिन के बाद फिर डैश 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 है। सबकी अपनी अपनी अलग अलग तरह की समस्याएं हैं। कोई कोचिंग करना चाहता है तो उसके लिए उसके पास पैसे नहीं है। कोई IAS बनना चाहता है लेकिन पढ़ने में उसका बिल्कुल मन नहीं लगता। कोई कुछ करना चाहता है, कोई कुछ करना चाहता है और इच्छा के बाद फुल स्टॉप और फिर लेकिन, और लेकिन के बाद फिर समस्याओं की चर्चा। और ज़्यादातर जो समस्याएं होती हैं एक या दो ही वहाँ लिखी हुई होती हैं। दोस्तों, मुझे लगा कि इस विषय पर एक बहुत ही यथार्थवादी तरीके से, तर्कवादी तरीके से बात करना शायद आप सबके लिए कुछ लाभदायक हो सकता है, यही सोच करके मैंने इस विषय को आज चुना है। और इसमें मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो हमारी इच्छाएं होती हैं, जो डिज़ायर होता है, जिस डिज़ायर को हम फिर अपने जीवन का उद्देश्य बना लेते हैं, मकसद बना लेते हैं, वह डिज़ायर हमारी कितनी सही है, कितनी गलत है, कितनी छद्म है, कितनी छल से भरी हुई है, कितनी ढोंग है, कितना पाखंड है, कितना सत्य है, कितनी उसमें ताकत है, कितनी वह ऊर्जावान है, इसका मापदंड क्या हो सकता है? कैसे हम पता लगाएं कि जो हमने अपना उद्देश्य बना लिया है वह कितनी सच्चाइयों से भरा हुआ है, यानी कि उसका मापदंड क्या है, उसका हम मेजर कैसे करें? देखिए, मेजर करने के लिए कोई यहां आपके पास स्केल नहीं है, कोई गज और मीटर नहीं है कि आप उससे नाप लें, कोई बैरोमीटर नहीं है, कोई लैक्टोमीटर नहीं है कि उसके जरिए आप पता लगा सकें कि भाई ये जो मेरी इच्छा है, जिसको मैंने अपना उद्देश्य बना लिया है, ये कितना विशुद्ध है, कितना सही है, कितना गहरा है, ऐसा तो कुछ है नहीं। लेकिन फिर भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके आधार पर हम अनुमान लगा सकते हैं कि ये जो मेरी इच्छा है वास्तव में सही है या नहीं है। फ्रेंड्स, अपनी बात की शुरुआत में एक सच्ची घटना से करना चाहूंगा और ये सच्ची घटना अभी 2-3 दिन पहले मनोज मुंतजीर, जिनके बारे में मैंने इससे पहले आप सब से बात की थी और मैंने आप सबसे अनुरोध भी किया था कि बेहतर होगा कि आप इनके बारे में बकायदे YouTube पर डला हुआ है उसे सुने। मेरे पास 2-3 मेल आए जिसमें स्टूडेंट्स ने कहा कि सर हमने जो आपने सजेस्ट किया था उसे सुना, लेकिन पता नहीं कितने लोगों ने सुना, मुझे नहीं मालूम है। अभी 2-3 दिन पहले उन्हीं मनोज ने साहिर लुधियानवी के बारे में, उनके गीत वो प्रस्तुत कर रहे थे, अपना एक संस्मरण सा सुनाया। ये संस्मरण साहिर लुधियानवी से मिलने का संस्मरण नहीं है, उसके केंद्र में साहिर लुधियानवी है। इसे थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए, सुनने की नहीं। सुन तो आप बहुत रहे हैं और लगातार सुन रहे हैं, बचपन से सुन रहे हैं, क्या क्या नहीं सुन रहे हैं, इसलिए मैंने जानबूझ करके यहां कहा है समझने की कोशिश कीजिए। जब तक आप सुने हुए को समझेंगे नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि आप समय बेकार कर रहे हैं, व्यर्थ कर रहे हैं, उसका कोई अर्थ निकलना नहीं है। उन्होंने कहा कि एक बार मैं जा रहा था, इलाहाबाद जा रहा था, अपने शहर से इलाहाबाद जा रहा था, अपने गांव से इलाहाबाद जा रहा था, तो उन्हें स्टेशन पर एक बुक स्टॉल दिखी। आपने देखा होगा कि रेलवे स्टेशन पर बुक स्टॉल्स होती, हालांकि अब धीरे धीरे वो भी खत्म होते चले जा रहे हैं। वो बुक स्टॉल्स अब आपको खाने पीने की दुकानों में तब्दील होते हुए दिखाई देंगे, उनकी संख्या बहुत कम होती जा रही है। अदरवाइज पहले हर रेलवे स्टेशन पर छोटी बड़ी एक बुक स्टॉल हुआ करती थी और अगर ट्रेन आने में लेट हो रही है तो लोग वहां जाते थे, खड़े होते थे, किताबें और पत्रिकाएं सजी हुई होती थी, लोग भले ही न खरीदे लेकिन कम से कम उन पर एक नज़र तो मारते थे और कुछ लोग टाइम पास करने के लिए ले भी लेते थे, इसीलिए सबसे ज़्यादा जो किताबें बिकती थी वो रेलवे स्टेशन पर बिकती थी। दुर्भाग्य से अब वो युग भी लगता है कि इतिहास में दर्ज हो जाएगा। खैर, तो ट्रेन का उन्हें इंतजार करना था, वो भी एक बुक स्टॉल पर चले गए और उस बुक स्टॉल पर उन्हें एक पुस्तक दिखी, शाहिर लुधियानवी की शायरी, नाम कुछ इसी तरह का था, उसमें शाहिर लुधियानवी की शायरी का कलेक्शन था। उन्होंने वो किताब पलटी और पलटने के बाद उन्हें लगा कि मुझे ये किताब खरीद लेनी चाहिए। उसकी कीमत थी 18 रुपए, 18 रुपीज। अब उनके सामने देखे कि धर्म संकट क्या आया। धर्म संकट ये आया कि यदि मैं ये 18 रुपए की किताब खरीद लेता हूं तो मेरे पॉकेट में जितने पैसे हैं उससे मैं जिस पर्पस के लिए जा रहा हूं, शायद इलाहाबाद का ही उन्होंने नाम लिया था, वो पर्पस पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि इतने ही पैसे मेरे पास हैं कि इलाहाबाद में जाकर के मैं किसी तरह से नाश्ता वास्ता कर लूं, थोड़ा बहुत पेट भर भार लूं बस। और यदि मैं ये किताब खरीद लेता हूं तो मुझे इलाहाबाद के दौरान अपने जो नाश्ता करने की जो व्यवस्था है उसे कैंसिल करना पड़ेगा, फिर मैं नाश्ता नहीं कर पाऊंगा, मुझे भूखे रहना पड़ेगा, यानी बिना नाश्ते के रहना पड़ेगा, कुछ इसी तरह की बात उन्होंने कही थी। उन्होंने सोचा सोचा, लेकिन उन्होंने फिर बहुत अच्छा वाक्य कहा मनोज जी ने। उन्होंने कहा कि अंततः साहिर जीत गए और मेरा नाश्ता हार गया। मैंने वो किताब खरीद ली और वो किताब खरीदने के बाद पढ़ते पढ़ते मैं उस किताब को इलाहाबाद तक पहुंचा। और इससे पहले कि मैं इलाहाबाद पहुंचता, मैंने फाइनल कर लिया था कि मुझे जिंदगी में क्या करना है। मुझे शायरी लिखनी है और इसके लिए मुझे मुंबई जाना है, बंबई जाना है। मैंने बिल्कुल फाइनल कर लिया। अब आप देखिए कि वह जो इच्छा है मनोज जी की, वो कहां से पैदा हुई। एक छोटी सी घटना, और उस घटना ने उनके अंदर एक इच्छा पैदा कर दी, और उस इच्छा ने उनके अंदर एक संकल्प की भावना भी पैदा कर दी। वो संकल्प में कन्वर्ट हो गया और वो गए और वहां उन्होंने लंबी जद्दोजहद की है, और लंबी जद्दोजहद करने के बाद आज वो स्थापित हुए। तो दोस्तों, यहां मैं मेजरमेंट के लिए आपको केवल एक फार्मूला दे रहा हूं। आप सबके पास अपनी अपनी इच्छाएं हैं, अपने अपने उद्देश्य हैं। आप केवल उनका मापन इस आधार पर करें कि अपनी शिक्षा को पूरा करने के लिए आप कितना बड़ा त्याग करने को तैयार हैं, कितना बड़ा आप सेक्रीफाइस कर सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। अगर आप सेक्रीफाइस नहीं कर सकते, इसका मतलब है कि आप अपने मकसद से समझौता कर रहे हैं, और अगर आप अपने मकसद से समझौता कर रहे हैं तो आपका मकसद है ही नहीं। बहुत ही खूबसूरत मापदंड। और मुझे लगता है कि उद्देश्य चाहे जो भी हो, जैसा भी हो, छोटा हो या बड़ा हो, सवाल छोटे और बड़े उद्देश्य का नहीं होता, ये तो समाज का दिया हुआ पैमाना है। आपके लिए जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि वह आपका उद्देश्य है और आपके लिए वो बड़ा है। जैसे हर माता पिता के लिए अपनी संतान बड़ी होती है, सबसे प्रिय होती है, चाहे वो जैसी भी हो, ठीक इसी तरह से वो आपकी मानसिक संतान है, वो आपका अपना मकसद है, आपका अपना उद्देश्य, आपके लिए वो बहुत बड़ा है। समाज की दृष्टि से भले ही वो सामान्य हो, आप उसका मापदंड इस आधार पर करें, और केवल सोच के स्तर पर नहीं, अपने अतीत में जाएं और देखें कि जब जब ऐसे मौके आए हैं तो आपने क्या कदम उठाए, आपने क्या निर्णय लिए हैं। उससे आपको पता लग जाएगा कि आपके उद्देश्य में कितनी ऊर्जा है, और यदि उसमें ऊर्जा कम हुई है और आपने समझौते किए हैं तो मान करके चलिए कि आपका यह जो उद्देश्य है, आपकी यह जो इच्छा है, ये उथली है। या तो आप अपनी इस इच्छा को गहरा करें या फिर कोई उसको दूसरी किसी इच्छा से रिप्लेस कर दें। तो फ्रेंड्स, आज के लाइफ मैनेजमेंट में बस इतना ही। अब आप सबसे इजाजत चाहूंगा। नमस्कार।